नई जेनरेटिव एआई की लेहर के साथ उसकी एनर्जी की भूख भी बढ़ रही है। डेटा सेंटर्स तेजी से एक्सपैंड हो रहे हैं, पावर ग्रिड्स पर दबाव डाल रहे हैं और इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस की बैकलॉग को बढ़ा रहे हैं। एआई इंडस्ट्रीज में अपनापन बढ़ रहा है। टेक कंपनीज न्यूक्लियर पावर को लो एमिशंस एनर्जी सोर्स देख रहे हैं, डॉर्मेंट न्यूक्लियर प्लांट को रिवाइव कर रहे हैं और नए रिएक्टर्स पर दाव लगा रहे हैं ताकि पावर सप्लाई सिक्योर कर सकें। न्यूक्लियर एनर्जी क्लीन है, पर इसका इतिहास स्पॉटलेस नहीं। क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इससे ज्यादा सेफ और प्रैक्टिकल बना चुकी हैं? और क्या ये न्यूक्लियर सॉल्यूशंस एआई के फ्यूचर को पावर देने के लिए जल्दी आ सकती हैं? मैं हूं मैट फेरल, स्वागत है अनडिसाइडेड में। ये वीडियो रोबोरॉक के द्वारा लाया गया है। डेटा सेंटर्स बूम कर रहे हैं। 2024 तक दुनिया भर में 7,000 फैसिलिटीज थी, यानी 2015 से डबल। ब्लूमबर्ग का अंदाजा है कि ये हर साल इटली से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। 2036 तक ये इंडिया की एनर्जी यूज को टक्कर दे सकते हैं। ये सर्ज क्यों हो रहा है? वेल, नए फॉर्म्स ऑफ जेनरेटिव एआई और क्लाउड सर्विसेज की बढ़ती डिमांड जो मैसिव कंप्यूटेशनल पावर मांगती हैं। मेटा, एमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का इलेक्ट्रिसिटी यूज 2017 से 2021 के बीच डबल से ज्यादा हो गया। ये रुक नहीं रहा। जेनरेटिव एआई को गेम चेंजर कहा जा रहा है। मैकिन्जी एंड कंपनी का अंदाजा है कि ये ग्लोबल इकोनॉमी में 4.4 ट्रिलियन तक ऐड कर सकता है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है, ह्यूमन पावर चाहिए। जेनरेटिव एआई सर्विसेज एनर्जी गजल करते हैं। एक चैट जीपीटी रिक्वेस्ट 2.9 वाट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। ये गूगल सर्च से 10 गुना ज्यादा है और 60 वाट बल्ब को 3 मिनट तक जला सकता है। इससे डेली रिक्वेस्ट्स के मिलियंस से मल्टीप्लाई करो और एनर्जी यूज इतनी जल्दी बढ़ जाता है जितनी जल्दी आप कह सकते हो राइट अ रेसिपी फॉर अ लज़ानिया दैट डजंट यूज रिकॉटा चीज। इमेज, ऑडियो और वीडियो जनरेशन डिमांड्स को और ऊपर ले जाते हैं। एफिशिएंसी गेन्स का काम चल रहा है। कस्टम चिप्स डेवलप किए जा रहे हैं जो वर्कलोड्स को एफिशिएंटली हैंडल कर सकें। लेकिन कटिंग एज मॉडल्स में ब्रेकथ्रूज अभी भी बड़े इंक्रीसेस के साथ आते हैं कंप्यूटेशनल और एनर्जी डिमांड्स में। जेनरेटिव एआई की भूख 2030 तक इलेक्ट्रिसिटी नीड्स का 40% तक अकाउंट कर सकती है। तब तक डेटा सेंटर्स यूएस की इलेक्ट्रिसिटी का 11-12% कंज्यूम कर सकते हैं। 50 गीगावाट एडिशनल पावर की जरूरत पड़ेगी, यानी 50 बड़े पावर प्लांट्स का आउटपुट, साथ ही 500 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। ये एक शॉकिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है। डिमांड सोर कर रही है। अनक्लियर है कि एनर्जी प्रोडक्शन इतनी जल्दी स्केल अप हो पाएगी या नहीं। नए डेटा सेंटर्स को पावर देने के लीड टाइम्स बढ़ रहे हैं और कुछ सिटी हब्स जैसे एम्स्टर्डम, डबलिन और सिंगापुर ने नए डेटा सेंटर कंस्ट्रक्शन को टेम्पोरेरली बैन कर दिया था। समस्या सिर्फ पावर की अवेलेबिलिटी नहीं, लेकिन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सबस्टेशंस, ट्रांसफार्मर्स और ट्रांसमिशन लाइंस को अपग्रेड या इंस्टॉल करना, इसमें साल लग जाते हैं और फिर एनवायरमेंटल कॉस्ट भी है। ये सारी एनर्जी ड्रॉ क्लीन पावर की कमी के साथ बिग टेक के लिए एमिशंस को कर्ब करना मुश्किल बना रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने का वादा किया, लेकिन उसकी एमिशंस 2020 से 2030 के बीच 29% बढ़ गई, लार्जली एआई के लिए नए डेटा सेंटर्स के कंस्ट्रक्शन की वजह से। गूगल की एमिशंस और भी तेज बढ़ी, 2019 से 2023 के बीच 48% तक। कंपनी अब भी 2030 तक नेट जीरो एमिशंस का एम रखती है, लेकिन इसके लिए बहुत सारी क्लीन एनर्जी चाहिए। सोलर और विंड पावर क्लीन एनर्जी मूवमेंट के कॉर्नरस्टोन्स हैं, लेकिन ये तब क्लॉक आउट करते हैं जब सूरज नहीं चमक रहा होता और हवा नहीं चल रही होती। डेटा सेंटर्स ये 24/7 हमिंग करते रहते हैं, तो बैकअप प्लान क्या है? कई लोगों के लिए ये न्यूक्लियर पावर है। यूएस में न्यूक्लियर पावर के लिए उत्साह 1979 के 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट और 1986 के चेर्नोबिल डिजास्टर के बाद सिग्निफिकेंट ब्लो ले चुका था। और फन फैक्ट, मैं एक्चुअली 3 माइल आइलैंड के पास ही पैदा हुआ था, जो एक्चुअली बहुत कुछ समझाता है। जबकि पब्लिक कॉन्फिडेंस न्यूक्लियर पावर में कम हो गया था, चेर्नोबिल के दूसरे रिएक्टर्स और 3 माइल आइलैंड के ट्विन रिएक्टर अब भी ऑपरेट करते रहे। आज 28 स्टेट्स में 94 रिएक्टर्स अब भी देश की एनर्जी का 1/5 हिस्सा क्रैंक आउट करते हैं। ये उस टेक्नोलॉजी के लिए बुरा नहीं है जिसे कुछ लोग एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहा समझते थे। न्यूक्लियर पावर में कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ रहा है। ये रियलाइजेशन को रिफ्लेक्ट करता है कि फॉसिल फ्यूल प्लांट से होने वाली एमिशंस के कारण एयर पोल्यूशन ने पर टेरावाट आवर ज्यादा डेथ्स कॉज की हैं न्यूक्लियर पावर से। इवन पॉलिटिशियंस आर कमिंग अराउंड। कैलिफोर्निया गवर्नर गैविन न्यूसम ने डियाब्लो कैनियन न्यूक्लियर प्लांट को ओपन रखने के लिए पुश किया है, जिसे वो पहले बैन करना चाहते थे। 5 स्टेट्स ने रिसेंटली नए रिएक्टर्स बनाने पर बांस रिवर्स किए हैं। ये उन लोगों को सरप्राइज कर सकता है जो सोलर और विंड पावर के प्राइसेस को गिरते देख रहे हैं, जबकि न्यूक्लियर पावर और महंगा हो गया है। लेकिन बिग टेक के लिए ये एक्सपेंस जस्टिफाइड है। डेटा सेंटर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स बिलियंस में जा सकती हैं और इसमें कटिंग एज टेक जैसे सर्वर्स, प्रोसेसर्स और स्टोरेज हार्डवेयर शामिल नहीं है। ये सब प्राइस टैग में एडिशनल 30% या उससे ज्यादा ऐड कर सकता है और इसे हर 5 से 6 साल में रिप्लेस करना पड़ता है। और इन मैसिव इन्वेस्टमेंट्स को फुल कैपेसिटी पर चलाना इलेक्ट्रिसिटी के खुद के कॉस्ट से ज्यादा क्रिटिकल है। तो ये कोई सरप्राइज नहीं है कि मेजर कंपनीज पहले से ही न्यूक्लियर पावर के साथ कोजी हो रही हैं, हालांकि डेटा सेंटर्स को पावर प्लांट्स के पास लोकेट कर रही हैं ताकि ग्रिड बॉटलनेक्स को बाईपास कर सकें और जो मैसिव एनर्जी सप्लाई उन्हें चाहिए वो सिक्योर कर सकें। मार्च 2024 में अमेज़न वेब सर्विसेज ने टैलन एनर्जी को 650 मिलियन दिए अपने 968 मेगावाट क्यूमुलस डेटा सेंटर कैंपस के लिए, जो डायरेक्टली 3500 मेगावाट सस्केहाना न्यूक्लियर प्लांट से कनेक्टेड है पेंसिल्वेनिया में। डेटा सेंटर के पास पहले से 300 मेगावाट्स के राइट्स थे, लेकिन उन्होंने एडिशनल 180 की रिक्वेस्ट की। फेडरल एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन ने इसे रिजेक्ट कर दिया, ग्रिड रिलायबिलिटी और कॉस्ट फेयरनेस के कंसर्न्स को साइड करते हुए। ये हेजिटेंसी समझ में आती है। इलेक्ट्रिक पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक रीसेंट सर्वे ने पाया कि 1/4 से ज्यादा यूटिलिटी कंपनीज ने थर्मल और वोल्टेज वायोलेशंस एक्सपीरियंस किए कनेक्टेड डेटा सेंटर्स के ऑपरेशनल इंपैक्ट्स के कारण। अब ये ग्रोइंग टेंशन डेटा सेंटर डिमांड्स और ग्रिड लिमिटेशंस के बीच दूसरे टेक जायंट्स को न्यूक्लियर पावर तप करने से नहीं रोक रहा, लेकिन कभी कभी नेचर के अपने प्लान्स होते हैं। मेटा की एआई डेटा सेंटर के लिए एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास की रिक्वेस्ट एक रियल स्टिंगर से टकरा गई जब एरिया में एंडेंजर्ड बीस की रिपोर्ट्स ने प्रोजेक्ट को शट डाउन कर दिया। तो एक टेक जायंट क्या करे? वेल, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट हो तो आप एक पुराने रिएक्टर को डस्ट ऑफ करते हो, उसे वापस जिंदगी देते हो। डस्टिंग थिंग्स ऑफ की बात करते हुए मेरा ऑफिस और स्टूडियो थोड़ी मदद मांग रहे हैं, तो एक क्विक चीज पहले की हम एक पुराने रिएक्टर को ओपन करने की बड़ी मूव में घुसें। हे रॉकी, मैं यहां हूं, सफाई शुरू करो। आज के स्पॉन्सर के बारे में थोड़ा बताता हूं, रोबोरॉक सरोस 10। मेरा घर एक रोबोट वैक्यूम के लिए एक ऑब्स्टिकल कोर्स है। हार्डवुड फ्लोर्स, एरिया रग्स, लो फर्नीचर थ्रेशहोल्ड्स, डॉग और कैट टॉयज हर जगह। मुझे यकीन है आप रिलेट कर सकते हैं, जब इस छोटे से रोबोट को लोअर फर्नीचर के नीचे स्क्वीज करना होता है तब इसका रिट्रैक्टेबल लीदर नेविगेशन सिस्टम काम आता है। ये सिर्फ 3.14 इंचेस टॉल है। जब बात आती है थिकर रग्स या थ्रेशहोल्ड्स की, तो एडेप्टो लिफ्ट चसी इसे 10 सेंटीमीटर तक ऊपर उठाता है। अपग्रेडेड रिएक्टिव AI 3.0 ऑब्स्टिकल रिकॉग्निशन सिस्टम इसे ऑब्जेक्ट्स के पास ले जाता है बिना उन्हें हिट किए। ये आपके घर को सीखता है और अडेप्ट करता है। लेकिन मेरा फेवरेट फीचर है ड्यूअल एंटी टैंगल सिस्टम। मेरी वाइफ के बाल एक रोबोट वैक्यूम के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये रोलर ब्रशेज और साइड स्वीपिंग ब्रशेज के इर्द गिर्द उलाज जाते हैं। वेल, सरोस पर ड्यूअल डिवाइड मैन ब्रश के कारण अब और टैंगलिंग नहीं। मैं ब्रश बालों को सेंटर की तरफ फनल करता है, जहां पावरफुल 22,000 पास्कल्स ऑफ सक्शन काम संभालता है। लेकिन इसमें एक इंप्रूव्ड मॉपिंग सिस्टम भी है, जिसका लार्जर वाइब्रेटिंग सर्फेस एरिया और इंडिपेंडेंट एज मॉप है। ये एक्चुअली सेल्फ एम्प्टीइंग डॉक में मॉप को अनक्लिप कर सकता है, पहले वैक्यूम करने के लिए और फिर बाकी घर को मॉप करने के लिए वापस जा सकता है। ये बहुत क्लेवर है। अगर आप खुद के लिए एक रोबोरॉक सरोस 10 लेना चाहते हैं, तो उनके पास एक स्पेशल डील है $200 ऑफ के लिए लिमिटेड टाइम के लिए। और डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें। मैं अपने वाले को बहुत पसंद कर रहा हूं। गुड जॉब रॉकी। रोबोरॉक और आप सभी का चैनल को सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। तो वापस न्यूक्लियर की तरफ, माइक्रोसॉफ्ट ने कॉन्स्टेलेशन एनर्जी के साथ साइन किया, जो US में दूसरे न्यूक्लियर पावर फैसिलिटीज के चार्जमैन है, 3 Mile आइलैंड में 800 मेगावाट रिएक्टर को रीस्टार्ट करने के लिए। रिएक्टर 2019 में शट डाउन हो गया था सस्ते नेचुरल गैस और सब्सिडाइज्ड रिन्यूएबल्स से कंपटीशन के कारण। रिलायबल एनर्जी की डिमांड बढ़ने के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने 20 सालों तक उसकी सारी पावर खरीदने का कमिटमेंट किया है। कॉन्स्टेलेशन एनर्जी 1.6 बिलियन रिएक्टर को रिस्टोर करेगा। माइक्रोसॉफ्ट न्यूक्लियर जा रहा है, लेकिन ये कोई बार्गेन नहीं है। एनालिस्ट्स का अंदाजा है कि पावर 110 से $200 पर मेगावाट आवर के बीच पड़ेगी, जो टिपिकली अराउंड $100 रेट्स फॉर कोलोकेटेड एनर्जी से काफी ऊपर है। तो ये प्रीमियम क्यों पे करें? क्योंकि कांस्टेंट पावर को एक स्टेडी रेट पर लॉक करना माइक्रोसॉफ्ट को फ्यूचर प्राइस सर्जेस से बचाता है और एमिशंस टारगेट्स को हिट करने में मदद करता है। दूसरे क्लोज्ड न्यूक्लियर प्लांट्स को भी रिवाइवल के लिए कंसिडर किया जा रहा है, जैसे ड्यूएन आर्नोल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट आयोवा में। रेडिएंट एनर्जी ग्रुप के फाउंडर मार्क नीलसन कहते हैं, एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर प्लांट्स अब पावर में सबसे हॉट चीज है। ये डेटा सेंटर्स को बिल्ड आउट करने के लिए अपनी प्राइस नेम करने में सक्षम होंगे, जो उनके गेट पर ही पार्क्ड हैं। इतनी रिन्यूड इंटरेस्ट के साथ न्यूक्लियर में क्यों ना लार्ज न्यू फैसिलिटीज स्क्रैच से बनाएं? ये इसलिए क्योंकि 1970s के बाद से US में सिर्फ 2 रिएक्टर्स को कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूव किया गया, जो टेरिबली लेट और ग्रोसली ओवर बजट फिनिश हुए। जॉर्जिया में वोगल पावर प्लांट में 2 8,000 मेगावाट रिएक्टर्स 2009 में 14 बिलियन प्राइस टैग के साथ ग्राउंड पर आए, लेकिन 2023 और 2024 तक ऑपरेशनल नहीं हुए, जब तक 35 बिलियन प्रोजेक्ट में नहीं डाले गए। जब तक रिएक्टर्स ऑनलाइन आए, एवरेज कंज्यूमर ने $900 प्लंक डाउन किए थे और उनके एनर्जी बिल के लिए $9 महीने का और पे करते रहेंगे। फिर भी न्यूक्लियर एक्सपर्ट और प्लांट के एनर्जी डिपार्टमेंट की सीनियर एडवाइजर जूली कोजोराकी कहती हैं कि वोगल के साथ रियल ट्रेजेडी ये है कि हम 2 यूनिट्स के बाद रुक गए। तीन सबसे बड़े इश्यूज द इनकम्प्लीट डिजाइन और कंस्ट्रक्शन प्लान के साथ शुरू करना, अनट्रेन्ड वर्कफोर्स और इमेच्योर सप्लाई चेन। हमने तीनों को सॉल्व किया और फिर रुक गए। वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाती हैं, न्यूक्लियर प्लांट कंस्ट्रक्शन के अप्रोच को बिस्पोक वन ऑफ प्रोजेक्ट से आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए एक नए जनरेशन के न्यूक्लियर एंटरप्रेन्योर्स हेनरी फोर्ड को एम्यूलेट करने का एम रखते हैं, असेंबली लाइन स्टाइल प्रोडक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए इंट्रोड्यूस करके, स्किल्ड रिपेटिटिव लेबर और वेल डेवलप्ड सप्लाई चेन्स पर रिलाई करके इफिशियंसी और स्केलेबिलिटी को ड्राइव करने के लिए। अब US में न्यूक्लियर पावर को रे एनर्जाइज करने के लेटेस्ट एफर्ट्स SMRs यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर फोकस्ड हैं। स्मॉल क्योंकि ये लगभग 300 मेगावाट्स के हैं, एक ट्रेडिशनल रिएक्टर के साइज का एक थर्ड। मॉड्यूलर क्योंकि ये फैक्ट्री बिल्ट कंपोनेंट्स से बने हैं जो ट्रांसपोर्ट और प्रोजेक्ट के लोकेशन पर क्विक असेंबली के लिए डिजाइन किए गए हैं। और रिएक्टर्स एटम्स को स्प्लिट करना ही पॉइंट है। SMRs फ्लेक्सिबल हैं, ये ग्रिड में रूरल एरियाज में प्लग हो सकते हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, या इंडस्ट्रीज जैसे डेटा सेंटर्स या डिसैलिनेशन प्लांट्स को डायरेक्टली पावर दे सकते हैं। और क्योंकि ये मॉड्यूलर हैं, आप एनर्जी नीड्स बढ़ने पर और रिएक्टर्स ऐड कर सकते हैं, अपफ्रंट कॉस्ट्स को लोअर रखते हुए और पावर प्लांट प्रोडक्शन को ज्यादा अडेप्टेबल बनाते हुए। SMRs के मॉडर्न डिजाइंस भी प्रैक्टिकल और सेफ्टी बेनिफिट्स का एक बंच ऑफर करते हैं। ये टिपिकली लोअर प्रेशर्स पर ऑपरेट करते हैं, कम रीफ्यूलिंग की जरूरत होती है और अक्सर पैसिव सेफ्टी शट ऑफ्स के साथ कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। और पैसिव सेफ्टी शट ऑफ्स एक गेम चेंजर हैं फ्यूचर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को पास्ट के डिजास्टर्स से बचाने में। फुकुशिमा जापान 2011 को ले लो, ये 9.0 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक नहीं था जिसने न्यूक्लियर डिजास्टर कॉज किया। बैकअप जनरेटर्स ने प्लान के मुताबिक कूलिंग सिस्टम्स को चलाए रखा, लेकिन जब अर्थक्वेक ने सुनामी को ट्रिगर किया जो सी वॉल को ब्रीच कर गई, इसने प्लांट को फ्लड कर दिया, जनरेटर्स को नॉकआउट कर दिया और रिएक्टर कोर्स की कूलिंग को रोक दिया। रिजल्ट्स ओवरहीटिंग, तीन रिएक्टर्स में मेल्टडाउन्स और रेडियोएक्टिव मटेरियल का रिलीज। पैसिव सेफ्टी सिस्टम्स हाउएवर इस इशू को सॉल्व करते हैं, ये बैकअप जनरेटर्स या ह्यूमन इंटरवेंशन पर रिलाई नहीं करते रिएक्टर को सेफ रखने के लिए। कैलिफोर्निया बेस्ड कैरोस पावर के द्वारा डिजाइन किया गया SMR मोल्टन फ्लोराइड सॉल्ट कूलेंट यूज करता है जो बेयरली प्रेशराइज्ड है। ये डिजाइन हाई प्रेशर फेलियर्स के रिस्क को मिनिमाइज करता है और कॉन्स्टेंट कूलेंट रिप्लेनिशमेंट की जरूरत को एलिमिनेट करता है, क्योंकि मोल्टन सॉल्ट ट्रेडिशनल वाटर कूल्ड रिएक्टर में पानी की तरह इवेपोरेट नहीं होता। मेरीलैंड बेस्ड एक्स एनर्जी का SMR भी एक लो प्रेशर डिजाइन है, लेकिन हीलियम गैस को कूलेंट के रूप में यूज करता है। अगर रिएक्टर ओवरहीट होता है तो सिस्टम के अंदर एक ग्रेफाइट मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्शन को सस्टेन करने में कम इफेक्टिव हो जाता है, बिना एक्सटर्नल इंटरवेंशन के एक्सीडेंट को प्रिवेंट करता है। दोनों रिएक्टर्स ट्राई स्ट्रक्चरल आइसोट्रॉपिक या ट्राइसो पार्टिकल फ्यूल यूज करते हैं जो यूरेनियम, कार्बन और ऑक्सीजन से बना होता है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिरेमिक और ग्रेफाइट में रैप्ड। हर ट्राइसो पार्टिकल को अपना छोटा कंटेनमेंट वेसल समझो जो न्यूक्लियर फिशन प्रोडक्ट्स को अंदर ट्रैप करने में सक्षम है। पार्टिकल्स भी एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स पर इंटैक्ट रहते हैं, फ्यूल को मेल्ट होने से बचाकर वर्स्ट केस सिनेरियोज में भी, और कूलेंट्स और फ्यूल वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स में स्टेबल रहते हैं। सेफ्टी डायरेक्टली SMRs के डिजाइन में बिल्ट है। अक्टूबर 2024 में गूगल ने कैरोस रिएक्टर्स के साथ को कमीशन किया US ग्रिड में 500 मेगावाट्स ऐड करने के लिए जो कैरोस खुद ऑपरेट करेगा। पहला SMR 2030 तक ऑनलाइन आने की उम्मीद है। एडिशनल यूनिट्स 2035 तक प्लान्ड हैं। वाही Amazon ने पावर यूटिलिटी कंसोर्शियम एनर्जी नॉर्थवेस्ट के साथ टीम अप किया है X एनर्जी के चार SMRs को कमीशन और रन करने के लिए। इनिशियल फेज में टोटल 320 मेगावाट्स, और Amazon का एम है कि 2029 तक US में 5 गीगावाट्स X एनर्जी SMRs ऑनलाइन लाए। Google और Amazon का एनर्जी को ग्रिड में ऐड करने का अप्रोच माइक्रोसॉफ्ट की स्ट्रेटजी से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है, जो एक सिंगल न्यूक्लियर रिएक्टर के पूरे आउटपुट को परचेस करने की है। ये सिर्फ उतनी एनर्जी खरीदते हैं जितनी उन्हें चाहिए, एक्सेस एनर्जी को यूटिलिटीज जो उन रिएक्टर्स को ऑपरेट करते हैं ग्रिड में बेचती हैं। ये लोकल कम्युनिटीज में लो कार्बन एनर्जी एक्सेस को बूस्ट करता है और SMRs को बिल्ड करने के हेफ्टी अपफ्रंट कॉस्ट्स को ऑफसेट करने में मदद करता है। प्लस एडिशनल रिएक्टर्स टाइम के साथ ऐड किए जा सकते हैं एनर्जी नीड्स बढ़ने पर पावर प्रोडक्शन को स्केल करते हुए। लेकिन एक कैच है, ये शाइनी नए SMR डिजाइंस अभी भी US न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन यानी NRC से रेगुलेटरी अप्रूवल की जरूरत है इससे पहले कि ये बनाए जा सकें। SMRs के लो कॉस्ट असेंबली लाइन मैन्युफैक्चर का एक मेजर बैरियर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए मटेरियल्स सोर्स करने में रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी है। ये ग्लोबल एम्बिशंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं न्यूक्लियर पावर को बूस्ट करने के लिए। COP28 में 22 देशों ने, यूनाइटेड स्टेट्स शामिल, 2050 तक न्यूक्लियर कैपेसिटी को ट्रिपल करने का प्लेज किया 2020 लेवल्स के कंपैरिजन में। और फिर फ्यूल इशू है, 1990 से ज्यादा न्यूक्लियर फ्यूल प्रोडक्शन रशिया को आउटसोर्स किया गया है। यूक्रेन के इन्वेजन के बाद एक्स एनर्जी जैसे कंपनीज को न्यूक्लियर फ्यूल की कमी के कारण लाइसेंसिंग और स्टार्ट डेट्स डिले करनी पड़ी। इसके रिस्पांस में पांच देश इंक्लूडिंग द US $4.2 बिलियन मोबिलाइज कर रहे हैं एक ग्लोबल एनरिचमेंट यूरेनियम मार्केट एस्टैब्लिश करने के लिए रशिया से इंडिपेंडेंट। लेकिन ये सॉल्यूशंस टाइम लेंगे। अब तक सिर्फ एक SMR डिजाइन NRC सर्टिफिकेशन रिसीव कर चुका है न्यू स्केल पावर का 7000 मेगावाट रिएक्टर जो लार्जर ट्रेडिशनल रिएक्टर्स की सेम टेक्नोलॉजी यूज करता है। उस अप्रूवल को लेने में एक डिकेड लगा और $500 मिलियन का खर्चा आया, लेकिन इन्फ्लेशन और राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स ने न्यू स्केल पावर के इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को लगभग डबल कर दिया और कंपनी प्रोजेक्ट को अफ्लोट रखने के लिए इनफ कस्टमर्स सिक्योर नहीं कर पाई, ये फेल हो गया। एनआरसी का कहना है कि वो इंप्रूव करने पर काम कर रहे हैं कैरोस पावर के हर्मिस टेस्ट रिएक्टर के रीसेंट अप्रूवल को साइट करते हुए जो सिर्फ 18 महीने में दिया गया। और क्लियर होने के लिए, ये एक नॉन पावर टेस्ट रिएक्टर है, कोई कमर्शियल एसएमआर नहीं, लेकिन ये परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशंस की तरफ एक शिफ्ट को सिग्नल करता है, वो अप्रोच जो एडवांस्ड एसएमआर टेक्नोलॉजीज को कॉन्सेप्ट से रियलिटी तक लेन के लिए जरूरी है। जनरेटिव एआई का रैपिड राइज और डेटा सेंटर्स का एक्सप्लोसिव ग्रोथ डीकमिशन्ड न्यूक्लियर प्लांट्स और नए सेफर एसएमआर के डेवलपमेंट में रिन्यूड इंटरेस्ट को स्पार्क कर चुका है इनॉर्मस एनर्जी डिमांड्स को मीट करने के लिए। मैं एक्चुअली इन फैसिलिटीज में से एक को विजिट करने पर काम कर रहा हूं ताकि अंदर का एक लुक ले सकूं, तो स्टे सब्सक्राइब्ड और उसके लिए नजर रखें। जैसे जैसे डिकार्बनाइजेशन का पुश एक्सेलरेट हो रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी टेक जायंट्स के लिए एक रिलायबल लो कार्बन सॉल्यूशन के रूप में स्टैंड आउट हो रहा है। नए न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए टाइमलाइन, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और रेगुलेटरी अप्रूवल दोनों पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक चीज क्लियर है, अगर एआई दुनिया को रीशेप करने जा रहा है तो इससे बहुत सारे वर्ड्स की जरूरत होगी। लेकिन आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यहां जाने का सही रास्ता है? कमेंट्स में जंप करें और मुझे बताएं, और मेरे फॉलोअप पॉडकास्ट स्टिल टू बी डिटरमिन्ड को सुनना ना भूलें, जहां हम इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ेंगे। और हमेशा की तरह मेरे पेट्रंस का शुक्रिया आपके कंटिन्यूड सपोर्ट के लिए और चैनल को चलाने में मदद करने के लिए। अपना माइंड ओपन रखें, क्यूरियस बनें, और मैं आपको नेक्स्ट वन में मिलता हूं।